Recording in progress.
그렇군요. 알함둘릴라히 와카파 와살람은 알라 이바디힐 라지나 스타파 암마 바드 파우즈 빌라히 미네 쉐이탄일 라짐 비스밀라히 르흐마니 르히임 인나카 라 투스미울 마우타 와 라 투스미울 숨마 두아아 이자 왈라우 무드비린 وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة النمل کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی جلد نمبر 6 سے. پچھلے جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں اس کلاس کے اندر اس کے اوپر اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیجئے لکھ کر کے چیٹ ونڈو کے اوپر. یہاں پہ طریقہ ہے. تو یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی آیت نمبر 80 اور 81 پیج نمبر 601 کے اوپر, بلکہ اسکرین بھی شیئر کی ہوئی ہوتی ہے معرفت قرآن کی. تو اس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر ہم نے کل پڑھ لیا تھا, معارف و مسائل ہم نے شروع کر لیے تھے. تو پھر وہاں سے ہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار, جبکہ وہ اپنی پیٹھ پھیر کر کے لوٹ جائیں آپ کے پاس سے, چلے جائیں آپ کے پاس سے. اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے, ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتے ان کی گمراہی سے جو اندھے ہیں. آپ تو سناتے ہیں سوائے اس کو جو کہ ایمان لے کر کے آیا, یعنی آپ نہیں سنا سکتے اس کو سوائے اس کے جو کہ ایمان لے کر کے آیا ہماری آیات کے اوپر اور اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا, مسلمون اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت فرمایا تھا یا لکھا تھا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ تھے اس کا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچا لے, کہ اتنی شفقت تھی پوری انسانیت کے لیے کہ ہر ایک کو جہنم سے بچا لیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنی دعوت دیں, اتنی جو ہے تبلیغ کریں, اتنی جو ہے وہ اچھے سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کریں کہ سب کو جہنم سے بچا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا تھی, یہ خواہش تھی. تو جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تھے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا اور آپ ایسے غمگین ہوتے تھے کہ جیسے کسی کی اولاد اس کے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو. ٹھیک ہے, اس ٹاپک پہ بات ہو چکی کل کہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے, اور بدقسمتی سے بلکہ ہمارے نام ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے آج کل کچھ جگہوں پر کیسا تعلق بن گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو آگے چلتے ہیں کہ اس لیے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں, مختلف الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرمائی. سابق آیات میں ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق اسی سلسلے کا ایک عنوان تھا, ہے نا, کہ آپ ان کے اوپر غم نہ کیجئے اور آپ اپنے سینوں کو تنگ نہ ہونے دیجئے, یعنی گھٹ ان کے غم میں گھٹ گھٹ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجئے, جیسے اردو زبان میں بولا جاتا ہے گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ٹھیک ہے, تو فی ضیقن کا یہ مفہوم بنتا ہے. تو اب اس ان آیات مذکور الصدر, یعنی یہاں پر جو ذکر کی گئی آیات, تو جو آیت اس میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا, اور وہ آپ پورا کر چکے. ٹھیک ہے, دیکھیں جنرل بات ہے, کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کا جو تعلق ہے یہ ایک شیخ اور مرید کا تعلق ہے. شیخ اور مرید, اللہ تعالیٰ شیخ ہیں اور نبی علیہ السلام مرید ہیں. अल्लाह ताला उस्ताद हैं और नबी अलैहिस्सलाम शागिर्द हैं। बीच में वास्ता जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो हुक्म के गुलाम, बस जो दे दिया वो पहुंचा दिया, ठीक है। तो असल में तो उस्ताद, असल में तो शेख, असल में तो जो 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 हादी हैं वो अल्लाह ताला हैं, और बराह रास्त किसको कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम को तालीम दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, इसलाह कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, राइट। ये मुस्तकिल ये सिलसिला पूरा कुरान मजीद जो है ना वो इससे यानी भरा हुआ है, इससे जो है वो, बल्कि कहना चाहिए कि इससे जो है वो यानी मुजयन हुआ हुआ है इन वाकयात से जो अल्लाह और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान होते हैं। तो अब नबी अलैहिस्सलाम जो मेहनतें कर रहे हैं उस, वो भी अल्लाह ताला ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे पैगाम पहुंचाइए, ऐसे, राइट। लेकिन उसके दौरान जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर गम की और सदमे की और फिक्र की और इसकी जो कैफियत आ रही हैं, वो भी जब अल्लाह ताला देखते हैं कि ये जरा एतदाल से आगे, हद से आगे जा रही हैं, ये अपने ऊपर सदमा लेकर की कैफियत में मुबतला हो जाना, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को इसमें भी गाइड कर रहे हैं कि नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, ये बहुत टू मच हो गया, ये अब ये सही नहीं है, ठीक है। और मुख्तलिफ उनवान बदल बदल करके कभी किसी अल्फाज के साथ नबी अलैहिस्सलाम को रोक रहे हैं, कभी दूसरे अल्फाज इख्तियार करके नबी अलैहिस्सलाम को रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है शेख और मुरीद का ताल्लुक, ठीक है। शेख का यही काम होता है, मुरीद का ये काम होता है। पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि बड़ों का काम होता है, अगरचे के छोटे जो है ना वो बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहनती हैं और बड़े जो है ना वो ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन बड़ों का काम तो फिर भी है कि भाई ये मेरा, मेरे मनसब का, ये मेरे मकाम का तकाजा है कि मैं फिर भी तुम्हें तंबीह करता रहूं, या मैं फिर भी तुम्हें जो है ना वो एहतियात के लिए कहता रहूं, ये मेरा काम है। अब आप इसके ऊपर मुझसे नाराज ना होइए, अब आप इसके ऊपर मुझ पर गुस्सा ना होइए कि सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, आपको क्या हर वक्त मुसीबत पड़ी रहती है, क्या हर वक्त आपको जो है ना वो बोलने का शौक है ना, नहीं बोला करें आप, जैसे छोटे जो है वो अपने बड़ों के साथ शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई, बड़े का काम है बोलना, आपका काम है सुनना, ठीक है ना। अगर आप बहुत काम अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं तो खामोशी से सुन लें, कोई आगे से जवाब ना दे, कोई आगे से जो है वो बुरा जवाब ना दे, अच्छा जवाब बेशक दे सकते हैं कि जजाकअल्लाह, अल्लाह आपको बेहतरीन जजाए खैर दे, आपने मेरी इसलाह की फिक्र करी, आपने जो है मुझे सीधा रास्ता दिखाने की जो है वो यानी आपके अंदर मेरे मेरा मेरे मेरी फिक्र है आपके अंदर, ठीक है, इस तरीके से जरूर जवाब दे दे सकते हैं, लेकिन बुरे अंदाज से झड़क देना और उल्टी सीधी बातें बोल देना नहीं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से तरबियत और इसलाह का भी यही मामला होता है। तो मस्कूर सदर आयत में भी तसल्ली का मजमून दूसरे अंदाज से बयान फरमाया है कि आपका काम पैगाम हक को पहुंचा देने का वो आप पूरा कर चुके हैं, जिन लोगों ने इसको कबूल नहीं किया इसमें आपका कोई कसूर और कोताही नहीं है जिस पर आप गम करें, बल्कि वो अपनी सलाहियत कबूल ही को खो चुके हैं, ठीक है। आपके डिलीवर करने के अंदर कोई 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 बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, अगर आपके डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर या आपके डिलीवरी के तरीके में या अंदाज में जो है वो बुराई होती तो फिर कोई भी आपकी बात कबूल ना करता, किसी को भी आपकी बात समझ में ना आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझने वालों को आपकी बात समझ में आ रही है, तवज्जो देने वालों को, और जो जिन्होंने अपने अंदर से इस तकब्बुर के और हठधर्मी, कल हमारे हजरत भी बयान में ही फरमा रहे थे ना कि अकल कितनी ज्यादा थी लेकिन हठधर्मी और जिद की वजह से जो है वो बात को नहीं मानते थे, है ना। आखिरत, आखिरत का मामला क्या है, जो अकल को समझ में आता है, अकल को यानी अकली तौर पर आखिरत जो है उसके बगैर हो ही नहीं सकता। एक बंदा जो है वो 10 यानी 10 हजार बंदों के कत्ल का इंतजाम करे, राइट, जैसे हिटलर, मुसोलिनी और बल्कि ये तो चर्चिल और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने तो अपने आप को बहुत अच्छा बना करके निकाल लिया ना, तो इस वजह से जब हम कत्ले आम की बात करते हैं तो हमें जो है वो हिटलर ही याद आता है, हमें जो है वो क्या कहते हैं स्टालिन याद आता है, राइट, कि उन्होंने इतना कत्ल किया, क्यों, इसलिए कि स्टालिन और हिटलर वाले जो है ना वो दुनिया के ऊपर वो नहीं है, इस वक्त कब्जा नहीं है उनका, और जो है वो चर्चिल है ना, चर्चिल का कब्जा है और जो रोजवेल्ट है उसका कब्जा है दुनिया के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा निजाम अपना, अपने हॉलीवुड के जरिए से और अपने तालीमी निजाम के जरिए से, कि जब कत्लेआम की बात आती है तो लोगों को हिटलर और इटली का जो है ना वो याद आता है, और स्टालिन याद आता है ना, ये क्यों नहीं याद आते भाई? इन्होंने कोई कम कत्ल किया, इन्होंने तो ज्यादा कत्ल किए बल्कि, ठीक है, लेकिन इनकी कोई मिसाल नहीं देता। आप देख लें कैसी जहन साजी की है, कैसी जहन साजी की है, आप इनका नाम ही नहीं लेते कत्लेआम के अंदर, ठीक है ना। तो बहरहाल, तो बात क्या हो रही थी कि भाई जिन्होंने, यानी आखिरत की बात हो रही थी, हाँ, कि आखिरत जो है वो तो अकली दलाइल से भी वाजे है कि इतने बंदों का कत्ल, इसको कैसे सजा मिलेगी? इसको ज्यादा से ज्यादा आप एक दफा कत्ल कर देंगे, ठीक है ना, या आप उसको जरा अजियत वजियत दे करके फिर उसके बाद कत्ल कर दें, तो चलो भाई 10 बंदों के कत्ल की इसको सजा आपने दे दी अजियत वजियत दे करके, राइट। लेकिन कत्ल तो एक मरतबा आप इसको कर सकते हैं ना, दूसरी मरतबा तो आप इसको कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन इसने तो 10 लाख इंसानों को कत्ल किया, ठीक है ना, तो ये कौन सजा देगा इसकी? और कितने लोग हैं जिनको के कोई गिरफ्तारी का भी नहीं होता हमारे पाकिस्तान में, माशाल्लाह, है ना, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, फातिमा जना को कत्ल किया गया, शहीद जनरल मोहम्मद जाउल हक को कत्ल किया गया, आज तक किसी को पता ही नहीं कि ये किसने किसने कत्ल किया, राइट। वो कत्ल करने वाले भी जो है ना वो मर खप गए होंगे, जो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने कत्ल किया, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद जो मौलवी हजरात हैं, उलमाए कराम, इनकी तो लंबी लाइन लगी हुई है ना, हजरत यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत निजामुद्दीन शामिज़ई रहमतुल्लाह अलैह को, और यानी कितने डॉक्टर, और क्या नाम है, उबैदुल्लाह मुख्तार नाम था उनका क्या, और कितने हजरत असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी टांगे भी जो नहीं थी, तफसीर का प्रोग्राम करते थे बहादुराबाद कराची के अंदर, तफसीर के प्रोग्राम से वापस आ रहे थे और उनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है ना। यानी अपाहज, लंगड़े, यानी ऐसे मजबूर लोग, कितने गरीब, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना, लाइन लगी हुई है उलमाए कराम। अभी डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर आदिल खान रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अभी 2-3 साल पहले कत्ल किया गया सन 2020 में, राइट, किसने कत्ल किया? कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं पकड़ने वाला, कोई नहीं सजा देने वाला। इनके बच्चे नहीं थे, दीन का काम तो चलो ये ऊपर से करते थे ना, इनके क्या बीवी नहीं थी, इनके बच्चे नहीं थे, इनके ऊपर डिपेंडेंट लोग नहीं थे, इनका जो है वो, यानी इनकी जिंदगी नहीं थी, ये क्या कुल पत्थर के बने हुए थे, क्या थे ये लोग, ठीक है ना। तो इनको किसने किसने सजा देनी है, इस जुल्म करने वालों को किसने सजा देनी है? अगर आखिरत नहीं है तो फिर तो भाई तुम्हारे भी औलाद को आकर के, जो अगर इस तरह से तुम्हारी आंखों के सामने जबह करके चला जाए और तुम जो है वो कमजोर हो, तुम्हारी औलाद के कातिल को कोई ना पकड़ सके, कोई उसको सजा ना दे सके, तो क्या ये बर्दाश्त कर जाओगे कि नहीं कोई सजा मिलेगी तुम्हारे औलाद के कातिल को, राइट। तो अल्लाह ताला ने आखिरत का निजाम बनाया है ना, ठीक है। तो लेकिन क्या जिद, बस नहीं माननी क्योंकि तुम कह रहे हो, इस वजह से मुझे नहीं माननी, ठीक है। तो आपका कोई कसूर नहीं है, ये इनकी अपनी जिद है, हठधर्मी है, ठीक है। जो नवास ने भी तो किया था, आपने आपने माशाल्लाह अच्छा तफसीर की क्लास अच्छी पढ़ी है, तो उनको याद आती रहती है हर वक्त, तीसरे पारे 30वें पारे की तफसीर, ठीक है। तो जिस पर आप गम करें बल्कि वो सलाहियत कबूल ही खो बैठे हो चुके हैं। अच्छा, ये सलाहियत कबूल यानी किसी बात को कबूल करने की सलाहियत, सलाहियत का मतलब क्या होता है, यानी उर्दू में कुछ चीजें अब हमें, हम ऐसा उर्दू से दूर हो चुके हैं कि हमें उर्दू के अल्फाज की हकीकत भी, उर्दू के अल्फाज की हकीकत समझ में नहीं आती, ठीक है ना। इस वजह से उसको ऊपर भी जो है वो बात करनी पड़ जाती है कि, और वो उसके लिए मैं अंग्रेजी का सहारा, ठीक है ना, केपेबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है ना, इस्तेदाद, ये तो बड़ा मुश्किल उर्दू का वर्ड है, इस्तेदाद, ठीक है, यानी दे आर नॉट इवन केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग, है ना, इनकी इनकी इस्तेदाद ही जो है ना वो कबूल करने की ये अपनी खो चुके हैं। इनके गुम करदा सलाहियत होने को इस आयत में कुरान करीम ने 3 मिसालों में साबित किया, ठीक है। ये लोग अपनी सलाहियत खो बैठे ना किसी बात को कबूल करने की, यानी हक को कबूल करने की, तो उसको 3 बातों में साबित किया है, 3 मिसालों से। अव्वल ये कि ये लोग कबूल हक के मामले में बिल्कुल मुर्दा लाश की तरह है, जो किसी की बात सुनकर कोई फायदा नहीं उठा सकते। जैसे मुर्दा लाश होती है ना, तो उसको आप कह दें कि भाई आप मिट्टी में क्यों पड़ी हुई, आप उठ करके जाए वो साफ जगह पे पड़ जाए, वो नहीं उठ करके पड़ सकते, ठीक है ना, वो यानी कर ही नहीं सकती, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा, आप उसको कुछ नसीहतें करते रहें, है ना भाई, तुम्हारा अपना नुकसान है, धूप में पड़ी हुई हो ए मुर्दा लाश, धूप में पड़ी हुई हो, उठ के जरा साए में चले जाओ, नहीं वो ये कर ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरे ये कि उनकी मिसाल उस बहरे आदमी की है कि जो बहरा होने के साथ बात सुनना भी नहीं चाहता, बल्कि जब कोई सुनाना चाहता है तो उससे पीठ मोड़ कर भागता है, ठीक है ना, यानी अजीब बहरा आदमी है, बहरे को तो वैसी आवाज नहीं आती, लेकिन ये चाहता भी नहीं है किसी की बात सुनना, तो जिसको कहते हैं ना लिप रीडिंग, है ना, जहां इसको किसी के लिप्स जो है ना वो हिलते हुए नजर आते हैं ना कि हाँ ये मुझे कुछ कह रहा है, ये उस वक्त जो है ना वो देख करके वहां से भाग जाता है, ठीक है ना, तो अजीब किस्म का बहरा है, आवाज भी नहीं आती और ये लिप रीडिंग भी नहीं करना चाहता, हालांकि लिप रीडिंग करने करके भी बहुत सारे लोग बात को समझ जाते हैं जिन्होंने लिप रीडिंग के ऊपर जरा तवज्जो दी होती है ना, फोकस किया होता है, तो वो लिप रीडिंग से भी मैसेज को समझ जाते हैं, लिप रीडिंग समझते हैं होठों को के जो जुम्बश है, तो वो तीसरे ये कि उनकी मिसाल अंधों की सी है कि कोई उनको रास्ता दिखाना भी चाहे तो वो नहीं देख सकते, ठीक है, अंधे हैं, इस्तेदाद ही नहीं है रास्ता देखने की, कोई चीज देखने की, तो कोई कितनी कोशिश करता रहे, ठीक है। इन तीन मिसालों का जिक्र करने के बाद आखिर में फरमाया इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जरा बात करनी पड़ेगी कि ये सलाहियत कबूल को इंसान कैसे वो यानी कर जाता है, लूज कर जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए एक बात तो एक तरीका तो उम्मीद है कि आप लोगों को आप पता ही है कि जिसपे अभी बात हुई कि यानी सलाहियत कबूल इनकी कैसे खत्म हो गई, तो वो तो एक तरीका है, लेकिन एक और भी तरीका है, एक और भी वजह बनती है कि जिस वजह से या जिस तरीके से इंसान अपनी सलाहियत कबूल को खो बैठता है, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं वो क्या है। पहला तरीका जरा कंफर्म कर लें कि आपको वाकई पहला तरीका समझ में आ गया है या नहीं, तो वो भी लिख करके बता दे अगर कोई, कि इंसान अपनी सलाहियत कबूल को कैसे गुम कर देता है। पहला तरीका क्या है जो कि हम आपको बता चुके हैं, दूसरा तरीका क्या है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है जी। कबूल करने की इस्तेदाद, सच को तो इंसान कैसे गुम कर देता है, हठ और जिद की वजह से मानना नहीं चाहता, हठ धर्मी और जिद अनानियत तकबुर, ठीक है, क्या मतलब कि ये जो शख्स है ना जो हठ धर्मी जिद और अनानियत की वजह से नहीं मान रहा, इसकी वजह क्या है, ये हठधर्मी और जिद है, इसकी ये वजह नहीं है कि इसको समझ में नहीं आ रही बात, इसकी ये वजह नहीं है कि इसको बात समझ में नहीं आ रही, इसको बात समझ में आ रही है लेकिन ये नहीं मान रहा, ठीक है। तो ये है पहली सूरत या पहली वजह या पहला तरीका, ठीक है। अब बताएं दूसरा, दूसरा तरीका है, दूसरी वजह, दूसरी सूरत, ठीक है, कि इसको बात ही समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, बात ही समझ में नहीं आ रही इसको, इस वजह से जो है ना ये कैसे मानेगा बात को, ठीक है। तो सलाहियत कबूल के खो देने की दूसरी शक्ल क्या होती है, बात ही समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा अब चले, ये तो शायद आप पता नहीं कोई लिख रहा था या नहीं लिख रहा था, लेकिन ये तो हमने जवाब खुद ही बता दिया, ठीक है, तो इसकी क्या वजह है, सच्चे ने आपको तो अभी भांडा फूटा हुआ है ना, इस वजह से आप तो इन्होंने जवाब तो दे दिया सही वाला, लेकिन इसकी वजह है कि इन्होंने सही जवाब क्यों दिया, थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, जजाकल्ला आपने डायरेक्ट मैसेज में जवाब दिया ताकि कोई और ना देख सकूं, तो कोई और बताए कि बात ही समझ में नहीं आ रही इसकी क्या वजह होती है, जब बात ही समझ में नहीं आ रही तो कबूल कैसे करेगा, इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ही उसकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं उसके गुनाह की वजह से, नहीं, ये आप तकदीर पे बात को ना लेकर के जाए, ये आपने तकदीर वाली बात की, अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया तो भाई ये तो अल्लाह ताला का काम, तो फिर तकदीर के रियल में आ जाता है ना। हम तो कर रहे हैं वो बंदा क्या हरकत करता है, ये गुनाह की वजह से, तो भाई गुनाह तो उसने भी किया होता है, जो हठधर्मी और अनानियत की वजह से बात नहीं मानो, तो उसका गुनाह तो उसने भी किया होता है, लेकिन उसको बात समझ में आ रही है, जिद की वजह से नहीं मान रहा। दूसरी टाइप का बंदा वो उसको बात क्यों नहीं समझ में आ रही जिसकी वजह से वो नहीं मान रहा, उसकी क्या वजह है? यहाँ पे जवाब आया है, ओवर एजुकेशन ट्राइंग टू वैलिडेट साइंटिफिकली एवरीथिंग। आप लगता है नए हैं क्लास के अंदर। ओवर एजुकेशन जो है ना, वो पहली कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हैं इसको। जी माशाल्लाह, चलें मर्दों की तरफ से तो सही जवाब आ गए हैं, खवातीन में भी देख लेते हैं क्या जवाब आए। कि गफलत, पे अटेंशन नहीं करते। जी पे अटेंशन नहीं करते, ठीक है ना, यानी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, लैक ऑफ फोकस, मर्दों में ये जवाब आया था, लैक ऑफ फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन। और पे अटेंशन का हम मजाक में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी सास मरहूमा जो है वो पे अटेंशन का लफ्ज इस्तेमाल करती थी, ठीक है, यानी पे अटेंशन नहीं करते, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी इंग्लिश इसी को कहते हैं। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे मुझसे छोटा कमतर है और मुझे समझा रहा है, तो भाई इसको तकब्बुर कहते हैं ना, ये मुझसे छोटा कमतर है मुझे समझा रहा है, ठीक है, तो वो बात उनको समझ में आ रही है लेकिन छोटे के मुंह से आ रही है, इस वजह से नहीं माननी, तो ये तो तकब्बुर कहलाता है ना, जो कि ऑलरेडी हो चुका है पहली वाली। डी फोकस होते हैं, ठीक है ना, हसद की वजह से, हसद भी आप उसी चक्कर में डालते हैं पहले वाली के अंदर। हाँ, तवज्जो नहीं दे रहे होते लोग, इसलिए समझ नहीं रह पा रहे होते, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये उनका गुना होता है कि वो फोकस क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, इस वजह से उनको बात ही समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है ना। और जब बात कोई समझ में ना आ रही हो, तो बेशक उनके अंदर तकब्बुर नहीं है, उनके अंदर अनानियत नहीं है, इसलिए कि वो खुद छोटे लोग हैं। अच्छा, वो खुद छोटे लोग हैं, ठीक है ना। देखें, दुनिया में या इंसानी मुआशरे में दो दर्जे होते हैं इंसानों के, ठीक है ना, जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ तो ये बात बहुत तफसील से हो चुकी है, उम्मीद है कि कुछ को याद भी होगी। उसमें दो दर्जे होते हैं इंसानी मुआशरे के, ठीक है ना, एक दर्जा जो होता है वो होता है लीडर, क्या कहते हैं, लीडर, राइट, यानी इमाम, या आप समझ लें खवास, उसको खवास भी कह सकते हैं, लीडर भी कह सकते हैं और इमाम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा दर्जा होता है जिसको कहते हैं अवामुन नास, अवाम, ठीक है ना, कल अनआम, अवाम कल अनआम, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क होता है? जी ये अगर कोई बताए, ये लीडर जो है वो इनके सर के ऊपर सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं, ताज पहन करके ये माँ के पेट से निकले होते हैं, इस वजह से लीडर बन जाते हैं, ठीक है ना। और अवाम जो है वो बेचारे बगैर ताज की दुनिया में आ जाते हैं, इस वजह से वो अवाम बन जाते हैं। क्या फर्क होता है इन दोनों के दरमियान, अवाम में और खवास में क्या फर्क होता है, ये व्हाट व्हाट डिटरमिन्स द डिफरेंस, क्या क्या किस बुनियाद पे कोई अवाम है और किस बुनियाद पे कोई खवास है? जी लीडर के पास कुरान का इल्म होता है, माशाल्लाह क्या बात है आपकी, हिटलर के पास भी कुरान का इल्म था। जी लीडर जो होता है ना, अकल, अवाम के पास अकल नहीं होती, वो क्या बगैर दिमाग के पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, अपनी फिक्र और सबकी फिक्र नहीं, वो तो अच्छे लीडर होते हैं ना। हम आपसे अच्छे लीडर की तारीफ नहीं पूछ रहे, हम आपसे लीडर की तारीफ पूछ रहे हैं। तो जवाब यहाँ पे आ चुका है ख्वातीन में, कि लीडर में और आवाम में फर्क ये होता है कि लीडर जो होता है ना, उसके पास होता है इल्म, इल्म की वजह से उसकी अकल जो होती है वो दूसरों के मुकाबले में बढ़ी हुई होती है, क्योंकि अकल की डेवलपमेंट, कल भी जो मशीन लर्निंग के बारे में बात हुई थी, तो भाई जैसे जैसे नॉलेज अक्वायर करता है वो रोबोट, वैसे वैसे उसको अंदर एडवांसमेंट आती है, उसी तरीके से इंसान के अंदर भी जैसे जैसे नॉलेज अक्वायर करता है उसकी अकल जो है वो ज्यादा एडवांस हो जाती है, ठीक है ना। अब अच्छी तरह इस्तेमाल करना अपनी अकल को या बुरी तरह इस्तेमाल करना अपनी अकल को, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। तो लीडर जो है ना, वो इल्म से बनता है, जाहिल कभी भी लीडर नहीं हो सकता, जाहिल लीडर नहीं हो सकता कभी भी, लीडर होने के लिए इल्म शर्त है, ठीक है ना। जब इल्म आ गया उसके बाद अकल भी उसकी एडवांस हो गई, जब इल्म आ गया तो उसके पास फिर अथॉरिटी भी आ गई, ठीक है ना, लोगों को कन्विंस करने का उसको अंदाज आ गया, तरीका आ गया, ठीक है ना, क्योंकि भाई जाहिल तो नहीं कन्विंस कर सकता लेकिन, और उसने जो है वो अपने इल्म को हासिल करके, अपने इल्म को इस्तेमाल करके जो है ना, वो किसी तरीके से फिजिकल अथॉरिटी भी हासिल कर ली, अगर नौबत यहां तक आई फिजिकल अथॉरिटी, है ना, वो भी वो हासिल कर सकते हैं अपने इल्म को इस्तेमाल करके। अवाम जो होते हैं उनके पास इल्म नहीं होता, ठीक है ना, वो इल्म नहीं होता। अच्छा ये नहीं कि अवाम के पास खेती बाड़ी का इल्म नहीं होता, अवाम के पास जो है वो कोई और इस किस्म के प्रोफेशन का इल्म नहीं होता, नहीं, अवाम के पास प्रोफेशन का इल्म होता है, लेकिन लीडर बनने के लिए जिस किस्म की एक कॉम्प्रिहेंसिव इल्म की जरूरत पड़ती है ना, जिस दर्जे के इल्म की और जिस टाइप के इल्म की जरूरत होती है, वो अवाम के पास नहीं होता, इस वजह से वो अवाम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जब किसी के पास इल्म आ जाता है और वो उस इल्म को के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या होता है उसके इस इल्म की वजह से उसके अंदर क्या चीज पैदा होती है, इल्म की वजह से उसके अंदर तकब्बुर, अनानियत, उजुब, ठीक है, तकब्बुर पैदा होता है इल्म की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो तकब्बुर करने वाले लोग हैं ना, कि जो तकब्बुर की वजह से अपनी सलाहियत कबूल को खो चुके हैं, ये होते हैं लीडर टाइप के लोग, लीडर टाइप के लोग, ये इल्म वाले होते हैं, इनको पता होता है अपने इल्म की वजह से कि दावत देने वाला जो नबी है या जो वली है ये सही बात कर रहा है, लेकिन नहीं माननी मैंने क्योंकि मेरी लीडरशिप खराब होती है इसके अंदर, ठीक है। अवामुन नास के पास इल्म नहीं होता, अवामुन नास के पास चूंकि इल्म नहीं होता, इस वजह से अवामुन नास के अंदर तकब्बुर भी वैसा नहीं होता, कभी कभार छोटा मोटा बेवकूफी का तकब्बुर होता है ना, बेवकूफी है ना, कुछ है नहीं, कांकड़ी पहलवान साहब जो है वो अकड़ रहे हैं कि वो मुझे भी आता है मारना, हालांकि खुद कांकड़ी पहलवान है, तो वो तो बेवकूफी वाला तकब्बुर है ना, लेकिन जिसके पास वाकई ताकत है और वो तकब्बुर कर रहा है, तो हाँ भी किसी बुनियाद पे तकब्बुर कर रहा है क्योंकि इसके पास ताकत है, ठीक है ना। तो भाई अवाम के पास तो इल्म की ताकत ही नहीं है, इस वजह से अवाम के अंदर तकब्बुर नहीं होता है, ठीक है ना। फिर वो क्यों गुमराह रहते हैं, जब तकब्बुर भी नहीं है, अनानियत नहीं है और यानी हठधर्मी नहीं है, तो फिर वो क्यों गुमराह है, सारे के सारे अवाम के मुसलमान हो जाते हैं, नहीं, अवाम की भी अक्सरियत जो है मुसलमान नहीं होती और खवास की अक्सरियत भी मुसलमान नहीं होती, तो क्यों मुसलमान नहीं होते, क्यों, इसलिए कि अवाम जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस के अंदर पड़े रहते हैं, वो फोकस नहीं करते हैं, ठीक है ना, तवज्जो नहीं होती, इस वजह से जो है ना उनको बात समझ में नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो लीडर टाइप के लोग होते हैं ना, वो आकर के उनको फिर मवेशी की तरह से हांकते हैं, मवेशी की तरह, जिस तरह मवेशी को हाँका जाता है ना, मवेशी की मिसाल जो है ना वो अवाम की जैसी है, अल अवाम कल अनाम, इसी वजह से उर्दू जुबान का मुहावरा भी बना, कुरान मजीद से ये लिया गया, ये मुहावरा कुरान मजीद से लिया गया है कि अल अवाम कल अनाम, ठीक है ना, ये खवास कल अनाम नहीं होते, ये अवाम कल अनाम, ठीक है। तो अब जो मवेशी है, तो मवेशी का क्या, की क्या जिंदगी होती है, जिसके पास लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इधर से लाठी ना मारो उधर जो है भैंस ना जाए वो चलना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि भैंस जो है वो मवेशियों में से है ना, ठीक है। तो अवाम को क्या करना होता है, अवाम को ये नहीं कि जी वो अब लीडर बन जाए या जो है वो बहुत ज्यादा इल्म हासिल करें, किताबें पढ़ना शुरू कर दें और जो है वो आलिम बन जाए, दीन के आलिम या दुनिया के आलिम, नहीं, अवाम अपना काम करें लेकिन डिस्ट्रैक्टेड ना रहें, ठीक है ना, और तवज्जो से बात को सुने, गौर करें और ये देखें कि भाई हमारे लीडरों में से कौन मुत्तकी लीडर है, कौन शरीफ और बाहया लीडर है, हमें उस बाहया लीडर की बात को तवज्जो से सुनना है, और बेहया बेशरम और जो है ना वो ड्रामेबाज दज्जाल इस किस्म के जो लीडर हैं, चाहे जो भी हो, है ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, हम सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं सिवाय उलमाए हक के, ठीक है ना, जो भी हो, हमने उनकी बात नहीं सुननी, हमने तो भाई अल्लाह के दीन, अल्लाह के दीन ही सही है और कोई दीन सही नहीं है और कोई निजाम सही नहीं है, तो हम तो अल्लाह के दीन के निजाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो हमें जो जो बताने वाला है हम तो खाली उसकी बात सुनेंगे, वही है बस, है ना, हमने कोई नहीं तरक्की करनी, हमने कोई नहीं जो है वो क्या कहते हैं वो सड़कें और पुल, और हमने कोई स्काई स्क्रेपर्स और लंबे लंबे जो है वो ब्रिजेस, और हमने ये नहीं बनाने, हमने अपनी कब्र बनानी है भाई, 6 फुट की कब्र बस, ठीक है ना। दुनिया के अंदर अगर अच्छी सड़कें बनाने वाला कोई है जो कि हमारे दीन का नुकसान किए बगैर अच्छी सड़कें बनाता है, ठीक है बनाओ बना लो अच्छी सड़क, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन दीन के नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर दीन। ये अवाम का काम है, ठीक है ना, अवाम का काम ये है कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करे और अल्लाह के दीन वालों की बात सुने, बस और कोई नहीं। इसके ऊपर जहां मुसलमान ने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया है ना, बेड़ा गर्क उधर ही से शुरू हुआ है, ठीक है ना, कि दीन दुनिया को अलग अलग कर दिया है ना, दुनिया के मामला जो है ना वो तो हम दूसरे तरीके से करेंगे और दीन के मामला हम मौलवी के साथ करेंगे, और दीन के मामला को फिर शैतान ने आकर के वही बात है, जनाजे की नमाज और मस्जिद को खोलना और बंद करना और जो है वो फातिहा पढ़ाना, और इसके अंदर दीन को मुकैद कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो यानी एक तमाच, खैर ये बड़ी लंबी बात है, बहुत सारे लोग तो ट्रैक ही लूज कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये मसला है, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इसी बात को, अल्लाह ताला कुरान मजीद फरमाते हैं कि ये लोग जो है ना, ये जो अपनी सलाहियत कबूल को खो चुके हैं ना, तो फरमाते हैं अम तहसिबू अन अक्सर हम यस्मऊन या तहसबू ना, क्या आप गुमान करते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि इनमें से अक्सर लोग आपकी बात सुन रहे हैं, राइट, क्या आप गुमान करते हैं कि इनमें से अक्सर लोग आपकी बात सुन रहे हैं, अन्ना अक्सर हम यस्मऊन औ याकिलून, और इनमें से अक्सर लोग आपकी बात को जो है वो समझ रहे हैं, अकल, ये दे आर दे पेइंग अटेंशन, डू यू थिंक दे आर पेइंग अटेंशन, ठीक है, ये अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन हम इल्ला कल अनहाम, नहीं है ये लोग सिवाय मवेशियों के जैसे, बल हम अवल्लु सबीला, बल्कि ये मवेशियों से भी ज्यादा बुरे रास्ते को अपनाए हुए लोग हैं, बुरे रास्ते को अपनाए हुए, मवेशियों से भी ज्यादा बुरा इनका जिंदगी गुजारने का तरीका है, ठीक है ना। और फिर दूसरी वाली आयत तो कई दफा आप सुन चुके होंगे इस क्लास में भी हम, है ना, लहुम कुलूबुन या ला यफकहूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में अवामुन नास का जिक्र जो है ना वो अनआम की तरह करते हैं, कि ये तवज्जो दे करके बात नहीं सुन रहे होते, ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इधर सुन रहे हैं फिर उधर सुन रहे हैं फिर उधर भी जा रहे हैं फिर इधर भी जा रहे हैं उधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, कभी जो है वो यहाँ पे खाना खाया, अब अगले कल कल जो है ना वो दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई करना है, फिर उसके बाद तीसरा रेस्टोरेंट ट्राई करना है। ये खाने पीने वाले अनाम होते हैं जो कि मवेशियों की जैसे नहीं गुजारे होते हैं, कि मवेशी का कभी जो है ना वो चरना चरना काम होता है, तो इस तरह से क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरेंट सर्फिंग कहते हैं उसको, रेस्टोरेंट सर्फिंग, ठीक है ना। तो ये जो है वो जाहिरी तौर पर भी मवेशी की तरह, और जो वर्चुअली मवेशी की तरह वो ये कि कभी इधर शॉपिंग करने के लिए कपड़ा, इधर शॉपिंग करने के लिए वो अलग, वो इधर कपड़े के लिए उधर शॉपिंग करने के लिए, और उधर शॉपिंग के लिए इधर ये चीज खरीदना है उधर ये चीज खरीदना है, उधर ये वाला टॉप्स खरीदना है उधर जाकर वो वाले नेकलेस खरीदना है, इधर ये वाला कपड़ा खरीदना है उधर वो वाली ब्रांड आई हुई है, आज जे डॉट की ब्रांड पहननी है तो कल जो है वो पता नहीं कौन सी, एक जे डॉट ही मशहूर मुझे याद रहता है, इधर की ब्रांड पहननी है ना, हर वक्त अपने कपड़े के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल, ये कपड़ा नहीं वो कपड़ा, ये बाल नहीं, ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये खा तो नहीं रहे, ये खरीद रहे हैं पहनने की चीजें और ओढ़ने की चीजें और ऊपर अपने लेप करने की चीजें, तो ये वर्चुअली मवेशी के जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग जो है वो उनके लिए दीन भी जो है ना वो भी यही है, ठीक है ना, दीन भी यही है, मवेशियों की तरीके से वो दीन के अंदर भी बिहेव कर रहे होते हैं, कभी इधर सुन रहे हैं कभी उधर यूट्यूब की वीडियो सुन रहे हैं कभी उधर टिकटॉक की वीडियो सुन रहे हैं कभी, है ना, ये समझते ऐसा है कि जितना ज्यादा सुनेंगे ना या जितने ज्यादा लोगों को सुनेंगे उतना ज्यादा इल्म हासिल कर रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल गलत इनकी सोच है कि जितने ज्यादा लोगों को सुनेंगे उतना ज्यादा इनका इल्म बढ़ेगा, बिल्कुल गलत सोच है ये, ठीक है ना। इल्म हासिल करने में भी फोकस होना जरूरी है, क्योंकि इल्म के ऊपर हमने करना है अमल, हमने इल्म फॉर द सेक ऑफ इल्म हासिल नहीं करना, जरूरियात का इल्म हासिल करना है, ठीक है ना, फराइज का इल्म हासिल करना है, इल्मुल हाल जिसको कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर भी फोकस जरूरी है, डी फोकस होकर के तो आप फराइज का इल्म भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है ना बार बार की रिपिटेशन वाला जो इल्म है, तो इससे तो भाई आपके पास अमल के लिए टाइम ही नहीं रहता, ठीक है, और आपको जो चीज आपने सुनी होती है वो चीज आपको याद भी नहीं रहती और आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे होते, इंटरनलाइज भी नहीं कर पा रहे होते, तो अमल कहां से नौबत आएगी, कैसे अमल का आपके पास मौका मिलेगा? ठीक है, तो ये हर जगह मुंह मारना ये एक अलग चीज होती है, और इल्म हासिल करना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो खाना पीना भी मवेशी की तरह इंसान कर सकता है, और शॉपिंग और कपड़े और दूसरी चीजों के अंदर भी मवेशी की तरह जो है वो इंसान बिहेव कर सकता है, और इवन इल्म हासिल करने में भी इंसान जो है ना वो मवेशी की तरह बिहेव कर सकता है, और इस तरह से जो बिहेव करता है उसको इल्म से फिर कोई फायदा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो फोकस होना, अहले जमईयत में से होने की तो दुआ हमारे मशायख माना करते थे, मांगा करते थे। मशायख जो है ना वो आपस में बैठे हुए, कुछ बहुत पुराने जमाने के, तो उनमें से हमारे सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम गालिबन ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह था, या शायद कोई दूसरे इसी दर्जे के बुजुर्ग थे, तो वो ना अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो बात चल निकली कि जुमे के दिन ना एक कबूलियत दुआ का मौका होता है, एक वक्त होता है जुमे के दिन कबूलियत दुआ का, ठीक है ना। तो अल्लाह वाले फिर इसी तरह की बातें करते हैं ना, तो उनकी बात ये शुरू हो गई कि अगर मुझे कबूलियत दुआ का वो वक्त पता चल जाए ना तो मैं क्या मांगूंगा। तो किसी ने कुछ कहा कि मैं ये मांग लूंगा, मैं ये मांग लूंगा अल्लाह ताला से, मैं कबूलियत दुआ के उस मौके के ऊपर फलानी चीज मांग लूंगा फलानी। तो ये जो थे ना हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कबूलियत दुआ का मौका पता चल जाए ना कि ये घड़ी है, तो मैं उसमें अहले जमईयत की सोहबत मांगूंगा। अहले जमईयत, जिसको हमारी इंग्लू जबान के अंदर कहते हैं फोकस्ड लोग, फोकस्ड लोग जो कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, मैं उनकी सोहबत मांगूंगा अल्लाह ताला से, क्योंकि इनकी इतनी गहरी नजर थी, इनको पता था कि ऐसी सोहबत, यानी ये वही रगबत तलब मोहब्बत वाली सोहबत, ठीक है ना, अगर अहले जमईयत की किसी को मिल जाए ना तो बस इसके सारे काम बन जाएंगे दुनिया और आखिरत के। ठीक है, तो बात क्या थी कि सलाहियत कबूल को खो बैठते हैं। इसकी दो रीजन बनती हैं, पहली रीजन कि इनके पास इल्म होता है, इनके पास अकल होती है, लेकिन इस्लाह नहीं होती, इस वजह से तकब्बुर इनके अंदर आ जाता है, ये जिद और हठधर्मी की वजह से समझने के बावजूद नहीं मान रहे होते। और सलाहियत कबूल को खो देने की दूसरी सूरत क्या बनती है कि इल्म नहीं है, ठीक है ना, तो इस वजह से अवामुन नास में से हैं, लेकिन अवामुन नास का भी फर्ज क्या था कि वो फोकस होते और जो बुनियादी इल्म उनके पास है उसकी बुनियाद पर जो है वो अपनी लीडर चूज करते और उनके साथ नत्थी हो जाते, फोकस हो जाते उनके साथ, ठीक है, तो उनको जो है वो हिदायत का रास्ता उनके वास्ते से पता चल जाता। लेकिन इन्होंने अपना मुंह मारने की जो सिफत थी ना इनकी, उसको इन्होंने तर्क नहीं किया, मवेशियों की तरह से जिंदगी गुजारते रहे, इस वजह से ये मवेशियों से भी ज्यादा बदतर हो गए और ये राह हिदायत के ऊपर नहीं पहुंच सके क्योंकि इन्होंने अपनी सलाहियत कबूल को खो दिया। ठीक है, तो अब अगर हम अवाम में से हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए, और अगर हम खवास में से हो चुके हैं तो हमें उस बात को याद रखना चाहिए कि तकब्बुर नहीं करना है। ठीक है, आगे इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, कि आप नहीं सुना सकते सिवाय उसको जो कि अब हमारी आयात के ऊपर ईमान लाता है, यानी आपकी बात मानता है, ठीक है, और वो आपके सामने अपने आप को सबमिट करता है, यानी आप तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को सुना सकते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान लाएं और अतात कबूल करें। किसकी अतात कबूल करें? अल्लाह की अतात कबूल करें, क्या मतलब? अल्लाह के नबी की अतात कबूल करें, ठीक है, क्योंकि नबी ने क्या फरमाया, नबी सारे के सारे आके जो हमने पीछे सूरत शोरा थी या कौन सी थी जिसके अंदर के फत्तकुल्लाह व अतीउनी, अल्लाह से तो तुम डरो मुझसे मत डरो, ठीक है ना, लेकिन अताअत तुम मेरी मेरी इख्तियार करो क्योंकि हुक्म तो मैंने तुम्हें देना है, अल्लाह की तो तुम्हें आवाज नहीं आनी, ठीक है ना। तो मुझसे मत डरो का मतलब क्या होता है? मुझसे मत डरो का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम चोरी करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं कटवाऊंगा, डरो मत इस बात से, नहीं, मुझसे डरो का मतलब ये है कि भाई ये मत करो कि मैं तो इंसान हूं, तो मेरे सामने जो है ना तुम चोरी से बच रहे हो, मेरे सामने जो है वो बड़ा अदब और बड़े तमीज से रह रहे हो, और जब मैं वहां पे नहीं हूं तो वहां पर तुम बदतमीजी और झूठ और मुनाफिकत और चोरी और डाका और ये सब कर रहे हो क्योंकि मैं तो वहां पे नहीं हूं, और तुम्हें भी पता है कि मैं इंसान हूं, मैं आलमुल गैब नहीं हूं, मैं हाजिर नाजिर नहीं हूं कि हर जगह हाजिर हूं हर जगह नाजिर हूं, तुम्हें देख रहा हूं, या क्लोज सर्किट टीवी का मैंने कोई कैमरे का सिस्टम लगाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना, मैं इंसान हूं, मैं दीवार के पार नहीं देख सकता, मैं मादे के पार नहीं देख सकता, सिवाय वो चीज जो अल्लाह ताला मुझे बता दे अगर, तो ठीक है वो मुझे पता चल जाएगा, वरना मैं नहीं देख सकता। अल्लाह तो देख सकता है ना, अल्लाह तो हर जगह जो है अपने इल्म के साथ मौजूद है, तो तुम मुझसे मत डरो, तुम अल्लाह से डरो। ये नबी फरमाते थे, डरो तुम अल्लाह से, मुझसे डर करके मेरे सामने तुम ठीक हो जाओगे ना, पीछे तो तुम ठीक नहीं हो सकोगे, अल्लाह से डरो ताकि हर जगह तुम ठीक रहो। लेकिन अतात किसकी करो, मेरी अतात करो, ये नहीं अल्लाह की अतात करो। भाई अल्लाह की अतात के साथ साथ अतीउ रसूल भी तो फरमाया ना, और फिर आगे जाके उलिल अम्र मिनकुम भी फरमा दिया, ठीक है ना, क्योंकि हुक्म तो आता है रसूल के वास्ते से और हुक्म तो आता है उलुल अम्र के वास्ते से, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ना वो ये वाली कौन। अच्छा एक हमने मर्दों के साथ एक वो भी शेयर किया, बल्कि सारे मर्दों के साथ नहीं किया, तो बाकी माजरत उनके साथ भी कर लेंगे। एक बहुत अमीर कबीर मुसलमान बिजनेसमैन थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, तो अली बनात उनका नाम था, कुछ सालों पहले उनका इंतकाल हो गया, उनको जो है ना वो कैंसर डायग्नोस हुआ, ठीक है, और डॉक्टर्स ने गालिबन उनको कह दिया कि जी आप आपके पास 4 महीने हैं, या पता नहीं कितना टाइम दिया था, बस होता है बस इससे ज्यादा आप नहीं रह सकते दुनिया के अंदर, ठीक है। अच्छा उस बंदे के पास इतना माल था, इतना माल था कि इट्स नॉट इवन फनी, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में इट्स नॉट इवन फनी, यानी ही वॉज फिल्थी रिच, ठीक है ना, और थे भी बड़े शौकीन मिजाज, यानी गुनाहों की जिंदगी में नहीं पड़े हुए थे, ऐसा मुझे नहीं जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा या सुना, लेकिन बस यही ये खरीदना है, ऐसी गाड़ियों फिरारी गाड़ी रखी हुई है, तो घड़ी रखी हुई है तो सबसे महंगी वाली घड़ियां रखी हुई है, घड़ियों का कलेक्शन है, और जूतों का कलेक्शन है, तो चप्पलों का कलेक्शन है, तो ना जाने ही है ना, इस किस्म की ख्वाहिशात जो है वो पाली हुई थी, ठीक है ना, मुसलमान थे अरब, ठीक है, और थोड़ा बहुत दीनदारी थी, ठीक है, लेकिन ये जो मौत की फिक्र होती है ये जो है वो नहीं थी। तो जब उनको कैंसर का पता चल गया, बता दिया गया, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना वो उन्होंने अपनी जिंदगी को यू टर्न लिया, और फिर जो है ना वो चैरिटी के लिए ना जाने क्या क्या जो है वो अफ्रीका जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बस जल्दी जल्दी वो ऐसे ऐसे काम सदका जारिया वाले काम, ठीक है ना। तो उनसे किसी ने ये सवाल किया कि व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट, है ना, तुम्हें किस बात के ऊपर अपने सबसे ज्यादा अफसोस है, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि अल्फाज सब मुझे देख के पढ़ो, एक मिनट, वो अल्फाज वैसे तो मुझे याद थे जब भी तो मैंने सर्च किया था उसको, लेकिन एग्जैक्ट अल्फाज जो है ना वो उसकी एक अलग तासीर होती है। हाँ, तो उसने जवाब दिया कि माई बिगेस्ट रिग्रेट इज, कहाँ चला गया भाई, हाँ, माई बिगेस्ट रिग्रेट is that it took a man in a suit to tell me that I am going to die. It took a man in a suit to tell me that I am going to die, but Allah subhanahu wa ta'ala told me all my life, and yet I didn't believe him. ठीक है ना, it took a man in a suit का मतलब क्या कि डॉक्टर साहब जो थे ना कैंसर स्पेशलिस्ट, वो तो सूट टाई पहन करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वैसे भी कोई मुसलमान डॉक्टर तो मुश्किल ही है, तो सूट और टाई के अंदर जो है ना वो कोई डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि आई एम गोइंग टू डाई इन 4 months, या है ना, और मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया कि हाँ आई एम गोइंग टू डाई। लेकिन अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी मुझे इस बात को बताया कि आई एम गोइंग टू डाई, वन डे आई एम गोइंग टू डाई, यानी वही कुरान मजीद के जरिए से, अरब थे तो कुरान भी पढ़ते होंगे तो समझ में आता होगा, ठीक है ना, लेकिन आई डेंट बिलीव इन, यानी मैंने तवज्जो नहीं दी अल्लाह की बात के ऊपर, और मैंने आखिरत की तैयारी शुरू नहीं करी। अब जब से इस गोरे चिट्टे डॉक्टर ने आके बताया ना मैन इन अ सूट, अब जो है ना मैंने इसकी बात के ऊपर यकीन करके अब जो है आखिरत की तैयारी करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो एक जुमले के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत मजीद पहलू भी हो सकते हैं, एक तो जो आपके पास जाहिरी तौर पर आपको ना समझ में आता है वो भी, उसके अलावा भी है, तो उनमें से एक पहलू ये भी है कि अल्लाह टोल्ड मी ऑल माई लाइफ, तो एक तरफ हम रखते हैं अल्लाह को, है ना, अब ये भी कोई आलिम या कोई तसव्वुफ सीखे हुए तो नहीं थे ना, ये एक सादा से एक मुसलमान थे, तो इनके अल्फाज जो हैं वो अपनी सादगी के हिसाब से ही थे, लेकिन जो लोग जिनके सामने अल्लाह ताला ने इन बातों को खुलवा दिया है, ठीक है ना, तो उनको तो फिर दूसरी नजर से देखना चाहिए ना, कि देखें एक आदमी क्या कहता है कि इट टुक ए मैन इन अ सूट, یعنی ایک آدمی نے مجھے بتایا تو میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا، اور دوسری طرف اس نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ اللہ کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب، یعنی اچھی بات کر رہا ہے یہ بندہ، لیکن تفصیل میں جا کر کے دیکھیں تاکہ ہمیں سبق ملے اس سے کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، ہم یہی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک طرف تو ہم رکھتے ہیں بندے کو اور دوسری طرف ہم رکھتے ہیں اللہ کو، کہ جیسے اللہ اور بندے کا مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بندے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بندے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نیک بندوں کی بات نہیں مان رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہم نیک بندوں کی بات نہیں مان رہے ہوتے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ ہمارا اعتماد، زیادہ ہمارا ٹرسٹ، زیادہ ہمارا جو ہے نا وہ یعنی فوکس جو ہے وہ دنیا داروں کے اوپر ہوتا ہے، اور دنیا کی جو ذرا ان کے پاس ریل پیل ہوتی ہے ان کی بات ہم مان رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں بھی آیا کہ نہیں، یا سمجھا بھی پایا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال ان کی تو یہ بات تھی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اطاعت قبول کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اطاعت نبی کی قبول کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو میسج ہم تک پہنچاتے ہیں نا وہ اپنے بندوں کے واسطے سے پہنچاتے ہیں، ہمیں بندوں کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس پورے مضمون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سننے سنانے سے مراد محض کانوں میں آواز پہنچانا نہیں ہے، پہنچنا نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے وہ سما اور سننا ہے جو نفع بخش ہو، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ صرف ساؤنڈ ویو ذاکر کے ٹکرانے سے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہو، تو فائدہ مند سننا، اسی وجہ سے فوکس ہو کر کے سننا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ اس سے فائدہ بھی ایکوائر کر سکیں۔ جو سما نافع نہ ہو اس کو قرآن نے مقصد کے اعتبار سے عدم سماع سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو نہ تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ آپ جو ہے وہ عمل کی فکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سننا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ نہ سننا۔ عدم سماع کا مطلب ایبسنس آف ہیئرنگ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ آخر آیت میں یہ ارشاد کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی بات کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ریئلائزیشن اور ایکسیپٹنس کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اگر اس میں سنانے سے مراد محض ان کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا یہ ارشاد خلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہو جاتا، کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور ان کے سننے جواب دینے کی شہادتیں بے شمار ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ جو ہے وہ ان کو نہیں سنا سکتے، بھی کافر سنتے تھے، کافر جواب بھی دیتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ سنانے سے مراد سماع نافع ہے، سنانے سے مراد سماع نافع یعنی فائدہ مند، جو کہ ان کو یعنی جس سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں، یعنی کہ نبی جو بات کرتے تھے وہ نعوذ باللہ کوئی بے فائدہ بات کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، بلکہ جس سے کہ سننے والا جو ہے فائدہ اٹھائے وہ اس کے لیے سماع نافع ہے۔ نبی کو تو سنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ نبی جب اپنا کام کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو سناؤ جا کر کے، لوگوں کو بتاؤ جا کر کے، اب سننے والا بات مانے، سننے والا بات نہ مانے، نبی کو تو پھر بھی فائدہ ہے، یا ان جنرل دعوت دینے والے کو تو پھر بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی آیت ہے جو آپ میں سے ابھی کسی کو میں نے لکھی بھی تھی، کیا ہے کہ فذکر، نہیں وہ نہیں، ان نفعت الذکر، وذکر ان نفعت الذکر، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ یاد دہانی کرائیں اگر یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہو، اس آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے، اگر کہ آپ یاد دہانی کرائیں اگر یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہو، یہ ترجمہ بنتا ہے الفاظ کا، لیکن اس کی تفسیر بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے اس کی تفسیر۔ یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اگر فائدہ تو اگر فائدہ مند، اچھا اس کی تفسیر بالکل مختلف، کیوں بھی مختلف ہے؟ مولوی نے کہہ دیا اس وجہ سے مختلف ہے، نہیں، صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ مولوی دلائل اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہے، اس وجہ سے مولوی نے کہہ دیا تو مختلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہ بھائی ابو جہل اور اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام ان کو پھر بھی جا کر کے دعوت دیتے تھے अगरचे कि दावत देने का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता था, टस से मस नहीं हो रहे होते थे नबी अलैहिस्सलाम, फिर भी उनको दावत दे रहे होते थे। ठीक है, तो इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है, 100% इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है फिर? वज़क्किर इन नफ़अतिल ज़िक्रा का मतलब ये है कि आप याद दहानी का काम करते रहिए, याद दहानी का काम करने से लाज़मन फायदा होता है, लाज़मन फायदा होता है। अच्छा कैसे भाई लाज़मन फायदा होता है, इसके ऊपर सवाल होना चाहिए, है ना? अबू लहब को फायदा ना हुआ, अबू जहल को फायदा ना हुआ, तो लाज़मन फायदा कुरान में क्यों लिखा हुआ है और आप क्यों उसका तर्जुमा ऐसे करें कि लाज़मन फायदा होता है? वो इसलिए क्योंकि सुनने वाले को फायदा हो तो बहुत फायदा है, जाहिर सी बात है, नजर आ रहा है कि फायदा हो रहा है सुनने वाले को। लेकिन अगर सुनने वाले को फायदा नहीं भी हुआ, यानी उसने आपकी बात नहीं भी मानी, तो आपको तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि आप तो अपने परवरदिगार का हुक्म मान करके उसको बात पहुंचा रहे हैं, तो इस वजह से आपका फायदा तो कहीं नहीं गया, 100% आपका फायदा हो गया। अगला बंदा सुनेगा तो एडेड फायदा हो जाएगा, नहीं सुनेगा तो आपका फायदा तो कहीं नहीं गया। ठीक है ना? बस आसान सी इसकी तफसीर है, जो कि शवाहिद से भी साबित हो जाती है। या यो रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दिए जो आपके ऊपर नाजिल हुआ आपके रब की तरफ से। व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसाल रिसा लतहू, वल्लाहु यग़सिमुका मिन अन्नास, इन अल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफिरीन। तो हाँ, बस लम तफ़अल, इसका तर्जुमा जो है वो मेरे जहन में नहीं बन रहा है, कि बस जो आपने उन तक पहुंचा दिया, वो अगर अमल ना करें, हमा बल्लगता रिसालत हो, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे इंसानों से, तो इसका मतलब जो ब्लैंक आउट करना कहते हैं ना, ब्लैंक आउट होना, चले जजाकुमुल्लाह। तो आगे फरमाते हैं कि उनको मुराद, अच्छा तो इससे वाजह हुआ कि सुनाने से मुराद सेमाए नाफे है, उनको मुर्दा लाश तशबीह देकर जो ये फरमाया गया कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, इसके मानी भी यही हुए हैं कि जैसे मुर्दे अगर कोई बात हक की सुन भी लें और उस वक्त वो हक को कबूल करना भी चाहें, तो ये उनके लिए नाफे नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के दारुल अमल से गुजर चुके हैं, जहां ईमान व अमल नाफे हो सकता था। मरने के बाद बरजख या महशर में तो सभी काफिर मुनकर मुनकर ईमान व अमल साले की तमन्नाएं, यानी वो सभी काफिर मुनकर ईमान व अमल साले की तमन्नाएं करेंगे, ठीक है ना? मगर वो वक्त ईमान व अमल के कबूल होने का वक्त नहीं है। इसलिए इस आयत से ये बात साबित नहीं होती कि मुर्दे कोई कलाम किसी का सुन ही नहीं सकते। इसलिए सिमाए मौता के मसले से दर हकीकत ये आयत साकित है। ये मसला अपनी जगह काबिल नजर है कि मुर्दे किसी कलाम को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। अब ये जो है ना, वो आगे एक फिकही मसला, बल्कि अकीदे का के फिकही मसला, ठीक है, कि कब्र के अंदर जो मुर्दा पड़ा हुआ है या जो मर चुका है, बेशक उसकी मियत आगे पड़ी हुई है आपके, तो आप उससे जो बात कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो आपकी बात सुन सके, या उसके अंदर ये सलाहियत है ही नहीं कि वो आपकी बात सुन सके? ठीक है ना? ये आयत जो है ना, इससे उसके ऊपर हम दलील नहीं ले सकते कि वो उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है सुनने की, क्योंकि ये आयत उसके बारे में बात ही नहीं कर रही कि उसके अंदर सलाहियत है, मुर्दा में सलाहियत है कि मुर्दा में सलाहियत नहीं, नहीं, ये आयत उस बारे में बात ही नहीं करे, ठीक है ना? ये आयत तो खाली ये कह रही है कि आप उसको नहीं सुना सकते, कि अगर आप चाहें कि मैं सुनाऊं उसको, नहीं आप नहीं सुना सकते। ये एक स्पेशल समझने के क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने मुर्दों और हमारे दरमियान बरजख आड़ रखी है, ठीक है ना? एक बरजख रखी है, एक आड़ रखी है, एक पार्टीशन रखी है, ठीक है ना? जो भी इंसान मर जाता है ना, तो वो बरजख के उस तरफ चला जाता है, आड़ के उस तरफ चला जाता है, ठीक है ना? तो इस वजह से ना, ये एक डिफरेंट सिनारियो पैदा हो जाता है। जब वो बंदा जिंदा है तो वो बरजख के उस तरफ नहीं है, वो बरजख के इस तरफ है, जिस तरफ आप भी हैं। तो इस तरफ जो है ना, वो बात को कम्युनिकेट करने का अलग मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने रखा है, वही साउंड वेव्स वाला, ठीक ठीक है ना, साउंड वेव जो है वो आपके ईयर ड्रम्स, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, उसके ऊपर जाकर के वो टकराती हैं। ईयर ड्रम्स जो है वो एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जो कि अंदर जो कैनाल्स वगैरह सारी बनी हुई है उससे जो है वो ब्रेन तक जाती है। ब्रेन जो है उसके अंदर रूह की ताकत मौजूद होती है, और आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और है ना वो सब कुछ कर करा के बेसिकली एक प्रोसेसिंग हो जाती है आपकी अकल के अंदर, उस आवाज की, उन साउंड वेव्स की जो ईयर ड्रम के थ्रू अंदर दाखिल हो रहे, ठीक है ना। ये तो सिलसिला अल्लाह ताला ने रखा है इस दुनिया का। उस दुनिया यानी बरजख के अंदर जब वो, या बरजख के उस पार जब कोई बंदा चला गया ना, चाहे वो कब्र में नहीं भी गया हो, बस अभी उसकी मीयत पड़ी हुई है आपके सामने, लेकिन वो मीयत जो है ना वो अब वो उसका यानी गोश्त पोश तो इस दुनिया के अंदर है, लेकिन रूह आलम बरजख में जा चुकी है। अब क्या आप इसी तरीके से उसको वो बात सुना सकते हैं जिस तरह इस दुनिया के अंदर सुना सकते थे, या जिस दुनिया में जो मैकेनिज्म था उस तरीके से? नहीं, अब आप ऐसे नहीं सुना सकते। अब क्या है भाई, अब तो जी स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत है, ठीक है ना, एक 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 डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मेथड की जरूरत है, ठीक है ना। अगर वो कम्युनिकेशन मेथड बीच में होगा तब आप सुना सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप नहीं सुना सकते, यानी अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते। इतनी सी बात है खाली ये समय मौता की, ठीक है ना, मतलब यहां पर इतनी सी बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो इसकी मिसाल जो है ना, वो कल हम, कल नहीं परसों शायद, बेटे साहब के साथ कुछ साइंस की किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने वो कोई इस किस्म का टॉपिक आया था शायद, वाइब्रेशंस का, साउंड वेव्स का। तो हमने उनको कहा कि भाई आप लोग जैसे वो वाला करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, है ना, सारे बच्चे तकरीबन वो वाला एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, कि दो आपने पेपर ग्लासेस लिए, पेपर ग्लास, ठीक है ना, और पेपर ग्लास के जो है वो पेंदे में सुराख किया, ठीक है ना, और एक जो है ना वो रस्सी ली, उस रस्सी के उस रस्सी को जो है ना इस पेपर ग्लास के पेंदे में जो सुराख है उससे गुजार करके दूसरे पेपर ग्लास के पेंदे में जो सुराख है वहां से निकाल लिया, और फिर आपने ना दोनों एंड्स रस्सी के उसके ऊपर नॉट्स लगा दी। अब जो है ना वो दोनों पेपर ग्लासेस जो है ना वो उस रस्सी के ऊपर पिरो गए हैं जैसे, ठीक है ना। अब एक पेपर ग्लास को आप एक कोने में ले जाए रस्सी के, और एक बच्चा उसको अपने मुंह से लगा ले, जैसे लाउड स्पीकर होता है ना उस तरह से अपने मुंह के अंदर लगा ले, और दूसरा पेपर ग्लास जो है वो दूसरे कोने में रस्सी के ले जाए, और दूसरे कोने पे जो बच्चा है वो उसको अपने कान से लगा ले, ठीक है ना। अब जो है ना ये, अच्छा ये रस्सी होनी चाहिए बहुत लंबी, ठीक है ना, इतनी लंबी रस्सी होनी चाहिए कि अगर एक कोने पर बैठा बच्चा जो है वो आहिस्ता आवाज में बात कर रहा हो ना, तो दूसरे कोने पर बैठा हुआ बच्चा जो है उसको वो आवाज नहीं आए, ठीक है ना, क्योंकि दरमियान में लंबा रास्ता है, लंबा फासला है, ठीक है ना। तो अब यहां से चहमगोई में कोई बात कर रहा है तो भाई वो इतना दूर बच्चा बैठा हुआ है उसको आवाज नहीं आ रही क्योंकि बीच में फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी ही इंटेंसिटी, इतनी ही यानी लाउडनेस के साथ ये बच्चा अगर उस ग्लास के अंदर बात करना शुरू करे, और बीच में एक तनी हुई रस्सी मौजूद है, और दूसरे एंड पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो ग्लास को अपने कान से लगा ले, तो अब इसकी जो चहमगोइयां भी है ना, इसकी सरगोशी भी जो है वो भी दूसरे एंड के ऊपर बच्चे को सुनाई देगी, ठीक है ना। जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा है या करा है तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी, जिन्होंने नहीं करा तो शायद उनकी बात समझ में ना आई हो कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या मतलब कि इस दुनिया का तरीका क्या है कि करीब बैठ के अगर आप सरगोशी करेंगे तो डायरेक्ट बात पहुंच जाएगी, लेकिन अगर दूर हो लोग तो अब सरगोशी जो है ना वो नहीं पहुंच सकती जब तक कि बीच में ये स्पेशल मीडियम मौजूद नहीं है, ये रस्सी वाला मीडियम मौजूद नहीं है, तब तक बात नहीं पहुंच सकती। यही मामला जो है वो इस यानी दुनिया में और उस दुनिया के अंदर है, कि इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान अब ये नॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड काम नहीं करता, स्पेशल कम्युनिकेशन मेथड चाहिए। अगर वो स्पेशल कम्युनिकेशन मेथड अल्लाह ताला ने रखा हुआ है आपके और मुर्दे के दरमियान, तब तो उसको आवाज आ जाएगी आपकी, और अगर अल्लाह ताला ने उसको नहीं जी अभी नहीं बंद बीच में राइट, तो नहीं आएगी आवाज उसको, ठीक है ना। चले यहाँ पे क्या लिखा, वो क्या नजम है जिससे हम मुर्दों को अपनी आवाज सुना सकते हैं, वो क्या नजम है, नजम है जिससे हम अपने यानी हम मुर्दों को अपनी आवाज सुना सकते हैं। स्पेशल मेथड क्या है, वो स्पेशल मेथड आपके पास है ही नहीं ना, जबी तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि आप नहीं सुना सकते, वो सिस्टम नहीं है आपके हाथ में, ठीक ठीक है ना। यानी हमारे तो क्या, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में वो सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अगले जहान के लिए जो स्पेशल जो सिस्टम बनाया ना, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, ठीक है ना। ये अच्छा, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह महदूद हमें मिल्कियतें दी है ना, बहुत सारी चीजों की, कि भाई हमारे पास हमारे कपड़े की मिल्कियत है, हमारे घर की, हमारे गाड़ी की मिल्कियत है, और हमारे आमाल की मिल्कियत है, ठीक है ना। तो भाई दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मिल्कियतें दी हुई है ना, तो उसी तरीके से दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल दिया हुआ है। हेयरिंग और वो जो कम्युनिकेशन वाला सिस्टम होता है, हम उसके लिए जो है वो रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट में बयान किया, और हम उसके लिए जो है वो कोई कोई टेलीफोन सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसके लिए मोबाइल सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है वो बहुत सारे डिफरेंट है ना, वो क्या कहते हैं उसको, रेडियो माइक्रोवेव सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर ये दे दी है ना, छूट दे दी है, करो भी तुम, तुम्हारे इख्तियार में ये सिस्टम दे दिए। नहीं, ये इख्तियार इस दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन के लिए अल्लाह ताला ने दिया है, इस दुनिया से उस दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन करना, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार नहीं दिया। ये तो अल्लाह ताला एज एन एक्सेप्शन, जब देंगे तब होगा, जब नहीं देंगे तो उस वक्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ, वो क्या है कि क्या ये कभी कभी देते हैं अल्लाह ताला ये, या ये जो है वो अल्लाह ताला उमूमी तौर पर अल्लाह ताला इंसान को दे देते हैं, उमूमी तौर पर सबको ही मिल जाता है, कि जब वो कब्र के ऊपर खड़े होकर के कोई बात कर रहे होते हैं मुर्दे से, तो मुर्दे को आवाज आ रही होती है। ये इख्तियार अल्लाह ताला कभी कभी देते हैं एज ए स्पेशल सर्कमस्टेंस, या इन जनरल अल्लाह ताला ये इख्तियार लोगों को दिया हुआ है, अनलेस के अल्लाह ताला जो है वो उसको वापस ले लें। जैसे कश्फ है ना, आलम ये जो रूहानी दुनिया में कोई चीज देखना या रूहानी दुनिया की कोई चीज सुनना, इस एबिलिटी को कश्फ कहते हैं, ठीक है ना। ये कश्फ जो है ना, ये एक्सेप्शनल केसेस में अल्लाह ताला देते हैं, ये नॉर्मल नहीं है कि किसी को कश्फ मिल जाए, हर वक्त ही कश्फ मिल जाए, नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो क्या सिमाए मौता ये एक्सेप्शन है या ये नॉर्म है कि जब भी आप कब्र के ऊपर खड़े होकर के बात करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से मुर्दा जो है वो बात आपकी सुनेगा, जिस तरीके से दुनिया के अंदर जब आप किसी बंदे के सामने खड़े होकर के उससे बात करते हैं तो उसको सुनाई देते हैं ना, उसी तरीके से कब्र वाले को भी सुनाई देता है। ये टॉपिक ऑफ इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ उलमाए कलाम के दरमियान, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर अगली क्लास में, आगे ही इसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है थोड़ा बहुत। मैंने इन्होंने क्या लिखा है कि मैंने सुना है कि मैयत का सुनने में, मैयत के सुनने में सहाबा का इख्तलाफ था। आपने सही सुना है, और आगे मारफो कुरान में भी यही लिखा हुआ है, उसको हम क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। चलें क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। क्या लिखा है, सॉरी, क्या मुर्दे अगर सपने में कुछ कहें तो सही होता है? मुर्दे अगर सपने में कहें, वो डिपेंड करता है कि सपना आपका जो है ना वो सच्चा सपना है कि वो झूठा सपना है, ठीक है, यानी ख्वाब, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर सच्चा ख्वाब है तो फिर जो है ना वो मुर्दे की बात की कोई ना कोई वैल्यू है, और अगर झूठा ख्वाब है, यानी जो सच्चा ख्वाब नहीं है, उसको झूठा ख्वाब नहीं कहते लेकिन सच्चा ख्वाब नहीं है बस, ठीक है, तो फिर वो मुर्दे साहब आगे जो भी बोल रहे हो जस्ट इग्नोर इट। अब ये सच्चा और झूठा कैसे पता चलेगा, तो भाई इसके लिए या तो ताबीर जानने वालों के पास जाना पड़ेगा, या जिन्होंने ताबीर का इल्म जो है वो किताबों से कुछ पढ़ा वड़ा है तो उनके पास जाना पड़ेगा, तो वो कुछ बता सकते हैं आपको इस बारे में, ठीक है। चले, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।